मेरे अत्यंत प्रिय युवा साथियों नमस्कार। आज 28 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 बैच के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं सिद्धेश मनीष जिगुत्से, आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं, नरोत्तम कौशिक, आप भागलपुर बिहार से हैं, राजाराम अग्रवाल, आप उमरिया मध्य प्रदेश से हैं, और राकेश रंजन, आप मोकामा पटना बिहार से हैं। तो सिद्धेश, नरोत्तम, राजाराम और राकेश, आप सभी चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, कल जो मुझे बहुत से मेल मिले हैं उसमें दो तीन मेल कुछ इस तरीके के हैं जिनके बारे में जिनका मैं यहां सिर्फ उल्लेख करना चाहूंगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि सर, जब हम एग्जामिनेशन की तैयारी करने के बारे में पूछते हैं, सुनते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में, तो बड़े अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं और यहां तक कि कंट्राडिक्टरी ओपिनियन मिलते हैं। मतलब एक कोई कुछ कह रहा है तो दूसरा उसके बिल्कुल विरोध में कह रहा है, तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे करें, हम भ्रमित हो जाते हैं। मित्रों, यह स्थिति आती है, इसके बारे में मैं अभी यहां तो कुछ चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन एक सजेशन के तौर पर बस मैं फिलहाल इतना कहूंगा कि देखिए, जैसे एक डेस्टिनेशन होता है, एक मंजिल होती है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक ही नहीं होता है, है ना। उस मंजिल तक कई रास्तों के जरिए पहुंचा जा सकता है। लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके बताते हैं, यानी कि वो उनके द्वारा इजाद किए गए रास्ते हैं। डेफिनेटली एक व्यक्ति एक ही साथ दो भिन्न रास्तों पर नहीं चल सकता, ठीक है, वो संकट आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि यहां आप ही सबसे अच्छे निर्णायक हो सकते हैं कि आपको कौन सा रास्ता ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, ज्यादा उपयोगिता वाला लग रहा है, आपके लिए सुलभ हो रहा है, यानी कि आप उस पर चल सकते हैं। आपकी भी तो अपनी क्षमता और अपनी योग्यता है। और मुझे ये भी लगता है मित्रों कि आपके सामने सिलेबस है, देखिए आपके पास अनसॉल्व पेपर्स हैं, उनको देख करके भी आप बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे इसकी जो तैयारी करनी है या जो अनसॉल्व पेपर हैं, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका मुझे उत्तर ही देना है, अपने आप को उत्तर देने के लायक बनाना है। तो मैं उत्तर देने के लायक बन सकूं उसके लिए कौन सा रास्ता मेरे लिए ज्यादा मुफीद हो सकता है, ज्यादा उपयोगी हो सकता है, वहां थोड़ा सा आप अपनी ओर से भी सोच विचार कर निर्णय लेने की कोशिश करें। यह कोई बहुत ही भ्रमात्मक स्थिति नहीं है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है, सब अपने अपने ढंग से बताते हैं, आप अपने को कंफ्यूजन से बचाने की कोशिश करें। राइट मित्रों, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कि और भी स्टूडेंट्स के दिमाग में इस तरह की स्थितियां बन चुकी हों, तो मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग जो कल बात कर रहे थे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की, आज उसी विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे यह विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। राइट, लेकिन इससे पहले हम थोड़े से कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो कल की रेडियो न्यूज में है मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट खबर, मैं जानबूझ करके कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट खबर, और वो ये है कि जो केंद्र सरकार है अब वो राज्य सरकारों को एक पत्र भेज रही है। राइट, और उसमें वो क्या कह रही है कि जो सरपंच है उनके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाए, यानी कि उनकी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि एक तो ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की बात है, डेमोक्रेसी वहां तक पहुंच गई है। अब आप देखिए कि जब हम न्यूनतम योग्यता की बात करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति आ जाती है। आपको ध्यान होगा कि लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डेढ़ साल पहले की बात होगी, राजस्थान ने और हरियाणा ने अपने यहां ये व्यवस्था की थी और उस समय बहुत ज्यादा इस पर विवाद हुए थे। विवाद इस मायने में हुए थे कि जब आप अगर न्यूनतम योग्यता इस तरह की, जैसे शैक्षणिक योग्यता आप अगर निर्धारित कर देते हैं, और न्यूनतम योग्यता में डेफिनेटली शैक्षणिक योग्यता आएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, इसका मतलब है कि इस डेमोक्रेसी से आप बहुत बड़े उस हिस्से को निकाल देंगे उम्मीदवारी के रूप में जो शिक्षित नहीं है, तो फिर ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा। इसको लेकर के बहुत बहस हुई थी। मित्रों, मैं इस पर अभी ज्यादा बातें आपसे नहीं करने जा रहा हूं, नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली हो सका तो कल या परसों में इस विषय पर जरूर आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और इसे आपको नोट करते भी जाना है। इस पर जितने भी आपको तथ्य मिले, चाहे वो मेरे डेली ऑडियो से मिले या आपके अपने दिमाग में आए, या आप जब अपने दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे तब आपको मिले, क्लास अटेंड कर रहे हो वहां से मिले, अखबारों से मिले, न्यूज से मिले, जहां से भी आपको मिले, बहुत ही सॉलिड और जो महत्वपूर्ण आपको लगते हैं उन्हें आप नोट करते जाए। इसी समाचार का एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें हमारी मंत्री मेनका गांधी जी ने बताया कि देश में भी 2,00,000 महिलाएं पंच सरपंच हैं, 2,00,000 महिलाएं, तो उनके भी एक तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाएगी कि उनको ट्रेंड किया जाए। देखिए, सीधी सी बात है कि जो सरपंच होते हैं वो अपने आप में एक तरह से कहीं ना कहीं एक्सिक्यूटिव रोल भी प्ले करने लगे हैं, उन्हें रूल्स रेगुलेशन की जानकारी होनी चाहिए, उनके पास बहुत पैसा पहुंच रहा है, और अगर ये जानकारी हो जाएगी तो वो एम्पावर्ड हो जाएंगे, फिर आगे के भी चुनाव में ये आगे जा सकेंगे कि एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे फिर हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत होगी, और सबसे बड़ी बात है एग्जीक्यूटिव बहुत सक्षम होगी। ठीक है मित्रों, तो ये न्यूज का हिस्सा था, मैं इस पर इतनी ही बात आज करूंगा। दूसरी जो खबर थी वो भारत और रूस के बीच में एक छोटी सी खबर थी, आपने देखा कि आतंकवाद पर सहयोग करने की के हस्ताक्षर दोनों देशों ने किए हैं, कि जहां भी आतंकवादी मामले घटित होंगे वहां दोनों देश उसे समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। और इसी तरह से एक और सहमति बनी है मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है उनसे निपटने के लिए, और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और आपका ये जो आतंकवाद है एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। ये दूसरी खबर थी। मित्रों, जो तीसरी खबर है वो ये कि हमारा 15वां वित्त आयोग, जिसके बारे में हम लोगों ने 3-4 दिन पहले ही बात की थी, जो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जिसकी स्थापना की जाती है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और वो हैं मिस्टर एन के सिंह जी के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बातें बता दूं। वो बेसिकली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 1964 बैच के ऑफिसर रहे हैं, अब बिहार कैडर के, लेकिन बहुत ही एकेडमिक किस्म के व्यक्ति हैं, मतलब उनको इकोनॉमिस्ट भी माना जाता है कि वो अर्थशास्त्री भी हैं, प्रशासक तो हैं ही और राजनीतिज्ञ भी हैं। राजनीतिज्ञ इस मायने में कि सर्विस से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, उसके सदस्य बन गए थे, और जब वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके वो ओएसडी भी रहे हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी वो रहे हैं। इससे पहले वो प्लानिंग कमीशन में भी रहे हैं, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, और अभी ठीक इससे पहले वो 14वें वित्त आयोग के सदस्य भी थे। खासकर प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिस्ट और वित्त आयोग के सदस्य, इसकी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये उनकी वह बैकग्राउंड है जिसमें मुझे लगता है कि उन्हें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने में मदद की होगी। मतलब कुछ जानकारी तो आपको, वित्तीय जानकारी तो होनी चाहिए, फिर सेक्रेटरी भी आप इकोनॉमिक अफेयर्स रहे, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी होते हैं तो जो वर्ल्ड लेवल के जो ऑर्गेनाइज, जैसे वो आपके वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन सब के साथ आपको तालमेल रखना पड़ता है, बातचीत करते रहनी पड़ती है, तो उस रूप में हम कह सकते हैं कि चयन वाकई में काफी ठीक है, अच्छा चयन है। दोस्तों, एक अंतिम खबर, और वो आपने सुना कि इंडोनेशिया में जो बाली है, जो बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है बाली, वहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, माउंट अंगुंग, ये नाम याद रखिएगा, माउंट अंगुंग, ये ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, और बहुत ही विशाल विस्फोट, बहुत ही बड़ा विस्फोट है जिसका 10-12 किलोमीटर की रेंज में आवाज सुनाई पड़ी है, पूरा खाली कराया जा रहा है, पर्यटक वहां फंसे हुए हैं। यहां पर मैं एक दो बात आपसे स्पेशली कहना चाहूंगा। एक तो यह है कि अब देखते हैं ये घटना किस रूप में सामने आती है, कि ज्वालामुखी आपके सिलेबस में है, मेंस में। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, इनको अलग से मेंशन किया गया है। तो आपको ज्वालामुखी के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्यों आते हैं, कहां आते हैं। भारत इस बार इस मामले में बहुत ही खुशकिस्मती है कि भारत में ज्वालामुखी नहीं आते। अंडमान निकोबार, अंडमान में एक ज्वालामुखी है जो अब निष्क्रिय से हो गए हैं। अदरवाइज भारत में ज्वालामुखी इस कम से कम प्राकृतिक आपदा से तो भारत मुक्त है, हालांकि भूकंप आते हैं। और सामान्यतया ये माना जाता है कि जो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र होते हैं वो ज्वालामुखी से भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं, लेकिन थैंक्स गॉड कि भारत के साथ ये स्थिति नहीं है। इंडोनेशिया की जहां तक बात है, वहां 120 ज्वालामुखी ऐसे हैं जो सक्रिय हैं, जो समय समय पर जिनमें विस्फोट होता रहता है। ये सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दी है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप ज्वालामुखी वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर कि ये जो हमारे तीन स्तंभ हैं राष्ट्र के, इनमें किस तरीके से एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। और मैं टकराव की स्थिति इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में ये कहा है कि ये जो तीनों स्तंभ हैं ये एक दूसरे को सशक्त बनाने के लिए काम करें, मिलकर काम करें और कुछ इस तरीके से काम करें कि ये तीनों संस्थाएं मजबूत बने। स्वाभाविक है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि अभी इस तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, ठीक, राइट। तो खासकर मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मित्रों, वो बड़े अलग अंदाज में पूछे जाते हैं, वो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पूछे जाते बल्कि पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम इसके थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हैं कि व्यावहारिक रूप में क्या हो रहा है। मैं केवल हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के आपको उदाहरण दे रहा हूं या यूं कह लीजिए जिक्र कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि घटनाएं तो घटित होती हैं, चलिए एक बात है, घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, उन घटनाओं के पीछे जो चीजें काम कर रही हैं, उन घटनाओं के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं उसी को ध्यान में रख करके आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं। जैसे आप देखिए कि आप विधायिका को ले लीजिए, लेजिस्लेचर, उसका काम है कानून बनाना, ठीक है, आप कानून बनाइए तो आपको लगेगा कि ये जो विधायिका है, हमारी जो अभी वर्तमान की स्थिति है, इसका टकराव न्यायपालिका के साथ हो रहा है। आप अखबारों में ऑलरेडी देख रहे हैं न्यायपालिका के साथ। एक बहुत बड़ी बात यही है कि जो 1985-86 में जो घटना घटित हो चुकी है कि न्यायपालिका ने जब मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के लिए स्वीकृति दे दी थी सर्वोच्च न्यायालय ने, तो न्यायालय ने स्वीकृति दे दी, लेकिन संसद ने न्यायालय के इस निर्णय को खत्म करने के लिए बकायदे एक विधेयक पारित किया। तो यहां सीधी सी बात है कि आप न्यायपालिका के तथ्य को किनारे कर रहे हैं, टकराव स्थिति हो गई। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि विधायिका ने एक कानून पारित किया कि जो जजेस के जो अपॉइंटमेंट है हायर कोर्ट में, जजेस के जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए एक ग्रुप बना, एक आयोग बनाया जाएगा, संसद ने पारित कर दिया, लेकिन जब न्यायालय के पास, न्यायालय ने उसे अपनी न्यायिक समीक्षा के तहत उसे अवैध घोषित कर दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि संसद की चीजों को न्यायालय किनारे कर रहा है और न्यायालय की चीजों को संसद किनारे कर रहा है। एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफा है। और बीच बीच में ऐसे मामलों में आप देखते हैं कि न्यायपालिका प्रशासन पर कोई टिप्पणी कर देती है, चलिए प्रशासन पर टिप्पणी तो कार्यपालिका की बात हो गई, लेकिन इस तरह के सीधे टकराव की स्थितियां बन जाती हैं। इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म की बात होने लगी है, ठीक है। अब आप न्यायपालिका और कार्यपालिका को देखिए मित्र, तो जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो उसमें प्रशासन भी आ जाता है, क्योंकि देखिए कार्यपालिका जो मिनिस्टर्स हैं वो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के हिस्से होते हैं, पहले वो राजनेता होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद ही वो मंत्री बनते हैं और इसके बाद फिर वो मंत्रालय का काम देखते हैं, पूरा का पूरा काम चलाते हैं। तो वहां जाकर के वो एक तरह एक्सक्यूटिव के हिस्से हो जाते हैं, बस सिर्फ फर्क इतना है कि वो एक टेम्परेरी एक्सक्यूटिव हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सेक्रेटरीज और ज्वाइंट सेक्रेटरीज, ये स्थायी कार्यपालिका के हिस्से हैं, राइट। अब आप देखिए कि फिर वहां क्या होता है। अभी आप राम रहीम वाले मामले में देखिए कि राम रहीम को सजा सुनाई जानी थी, अब इतने सारे लोग उनके जो अनुयायी हैं पंजाब और हरियाणा को उन्होंने में फैल गए हैं और आशंका होने लगी है, जीवन वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लग रहा है कि खराब होगी, लोगों का जीवन डिस्टर्ब हो गया है, रेलों का आना जाना, लोग बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन यानी कि जो कार्यपालिका है वो ज्यादा एक्शन नहीं ले रही है। फिर न्यायपालिका ने क्या किया, न्यायपालिका ने अपने हाथ में ऐसा लगता है जैसे प्रशासन को ले लिया और आदेश देना शुरू किया कि नहीं आप फलाने पर एरिया उस एरिया से आने वालों को बंद कीजिए, यहां से लोगों को हटाइए और डीजी को ये, डायरेक्टर जनरल पुलिस को ये कहिए। न्यायपालिका का ये काम नहीं है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए न्यायपालिका ने ये काम करने का मन बनाया और एक तरीके से प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। तो यहां न्यायपालिका आपको प्रशासन में भी दखल देती हुई दिखाई देगी, लेकिन जब आप व्यावहारिक स्तर पर जाएंगे कि भाई फिर उसका उपाय दूसरा क्या था, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, उपाय यही था कि न्यायपालिका इस काम को अंजाम दे। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण दूं, अभी पद्मावती के मामले में देखिए कि पद्मावती के का मामला इतना जोर पकड़े, इससे पहले ही कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी कि पद्मावती फिल्म को रिलीज होने से रोका जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी सुनवाई करने से यह कहकर मना कर दिया कि ये जो काम है ये सेंसर बोर्ड का है, सेंसर बोर्ड ने अभी इस पर अपनी कोई राय नहीं दी है, तो सेंसर बोर्ड को यह देखना चाहिए, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप देखिए कि यहां उन्होंने सेंसर बोर्ड, अब वो एक तरीके की कार्यपालिका है, ठीक है, थोड़ा सा जुडिशियल टाइप का अर्ध न्यायिक आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहां उन्होंने उस संस्था की मर्यादा की रक्षा की, नहीं नहीं ये उनका काम है ये हमारा काम नहीं है, तो यहां आपको एक मर्यादा की रक्षा करते हुए भी वो दिखाई देंगे। फिर अभी आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि जो अशोक खेम का है, जो आईएएस ऑफिसर हैं हरियाणा कैडर के, उनका फिर से स्थानांतरण कर दिया गया, इनकी चर्चा मैंने की भी थी, ये उनके सर्विस कैरियर का 91वां स्थानांतरण है। यानी कि अब ये प्रशासन और राजनीति को थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के बीच के ही टकराव को देखिए, यानी कि जब ऐसे अफसरों से जो अस्थायी कार्यपालिका है थोड़ी सी परेशानी महसूस करने लगती है, तो ठीक है इसको हम सजा तो नहीं मानेंगे, लीगल लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हिसाब से ट्रांसफर करना कोई सजा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वह चीज दिखाई देती है कि इनफैक्ट उनको जो हटाया गया है वो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं वो सजा ही है। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से कार्यपालिका भी की भी मैंने चर्चा की है, विधायिका की भी की है और इधर न्यायपालिका भी की है, कि आपस में एक प्रकार से टकराव की स्थिति में खड़े दिखाई देते हैं, सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आपने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले ही एक मंत्री के द्वारा दिए गए वक्तव्य पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि नहीं, अगर प्रशासन मूक बना हुआ है तो न्यायपालिका चुपचाप नहीं बैठ सकती, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि कानून बनाना हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी रक्षा करना तो हमारा काम है, वो तो हम देखेंगे। तो मित्रों, ये कुछ इस तरह की घटनाएं जो लगातार घटती रहती हैं, मेरा निवेदन केवल आपसे ये है कि इन सब पर आप थोड़ा सा वैचारिक दृष्टि से ध्यान रखिए, केवल घटनाओं की दृष्टि से नहीं कि ये घटना घटित हो गई, उन घटनाओं से क्या विचार निकल करके आ रहे हैं, क्या प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, भविष्य में वो चीजें किस तरीके से आगे के समय को प्रभावित करेंगी, इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस मुख्य विषय के अंतर्गत इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग का सवाल है, मैं ढेर सारी क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, कल की खाना पूर्ति आज हो जाएगी, आप सब उन्हें अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। दोस्तों, अब मैं अंतिम चरण पर आता हूं, जो ईमेल का चरण है। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और आप में से ही कुछ दोस्तों के नाम हैं। शाकिब चिश्ती बंगलुरु कर्नाटक से, विनय सिंह दिल्ली से, सुभाष ठाकुर मुजफ्फरपुर बिहार से, मुहर्रम अंसारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, स्वयं बाबू राम, विनोद यादव, कुणाल रविदास, इंदर कुमियाल, मनीष कुशवाहा, मनोज माली, चंदन सिंह कंवर और सिद्धार्थ यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।